चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया था कि हमें वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, उनकी सदा प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, उनके भक्तों के संग में दासानुदास के रूप में रहकर सदा कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का स्वाद लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा आरंभ हुई, इस परंपरा में कई महान वैष्णव आए और इनमें से ऐसे कई महात्मा थे जो कि नित्य सिद्ध पुरुष थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के धाम से यहां पर पधारे थे केवल बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से वृंदावन के 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, साथ साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य भक्त भी थे। उनके बाद ऐसे महान आचार्य आए जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उसी परंपरा में चलते हुए आए नरोत्तम दास ठाकुर। आज उनका आविर्भाव दिवस है तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ये भगवान के धाम से, गोलोक वृंदावन से, खास करके यहां इस पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वयं यहां बुलवाया था। हालांकि जब उनका आविर्भाव हुआ तो उसी साल में चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हुआ था, तो इस प्रकट लीला में, जबकि चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला कर रहे थे उस समय, तो नरोत्तम दास ठाकुर कभी चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं, परंतु कई बार उनके स्वप्न में आए। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा नाम के शहर में, और फिर तुरंत वो वृंदावन की ओर चल पड़े उत्तर दिशा में, लेकिन वास्तव में उनकी इच्छा वृंदावन जाने की नहीं थी, उनकी इच्छा थी रामकेली नाम के गांव में जाने की, जहां की उनके 2 नित्य पार्षद, नित्य सिद्ध रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वो नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे। वो उनको नवाब की सेवा से निकालकर कृष्ण भक्ति के प्रचार के आंदोलन में शामिल कराना चाहते थे, तो केवल उन दोनों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए चैतन्य महाप्रभु रामकेली की ओर निकल पड़े। रामकेली के पास में कनाई नाटशाला नाम का जगह है जहां कृष्ण भगवान की सुंदर लीलाएं भी हुई हैं, तो वहां से पास में ही पद्मा नदी है बंगाल में, और पद्मा नदी के उस पार खेतुरी नाम का एक गांव है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए थे तो पद्मा नदी के पार उस ओर खेतुरी ग्राम की ओर देखकर अपने 2 भुजाओं को उठाकर बड़े जोर से प्रेमावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, नरोत्तम नरोत्तम। नित्यानंद प्रभु तो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। भक्तों को भी मालूम था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले भी कीर्तन में कई बार नरोत्तम नरोत्तम कह चुके थे, तो भक्तों ने अनुमान लगाया था कि शायद कोई महान व्यक्ति, कोई महान भक्त बहुत ही शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। लेकिन जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली गांव में स्थित होकर खेतुरी ग्राम की ओर देखते हुए इस तरह से नरोत्तम का नाम पुकारा तो बिल्कुल प्रेमावेश में आकर वो ऐसे नृत्य और कीर्तन करने लगे, इस तरह के भक्ति के लक्षण उनके अंदर प्रकट होने लगे, इस तरह से आंसू मूसलधार वर्षा के समान बहने लगे, प्राय वो बेहोश हो गए। तो नित्यानंद प्रभु भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि पहले तो हमने देखा है कि उन्होंने नरोत्तम कहा है, लेकिन इस बार नरोत्तम कहते हुए कोई अलग ही भाव दिखाई पड़ रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पास में बुलाया और कहा कि देखो नित्यानंद, पद्मा नदी के उस पार जो खेतुरी ग्राम है, इस गांव में हमारे जीवन, हमारे जीते जी, हमारे मृत्यु के पहले, हमारे धाम में वापस चले जाने के पहले एक महान भक्त प्रकट होने वाले हैं, जिनका नाम होगा नरोत्तम, और ये मेरा नित्य सिद्ध पार्षद होगा। इस धाम में प्रकट होकर ये हरिनाम संकीर्तन का रस इस तरह से चखेगा जैसे मैंने सिखाया है, और इस स्वाद, इस कीर्तन रस को चख के वो सब जगह इस कीर्तन रस को बांटेगा। कीर्तन में वो बड़ा निपुण होगा और आगे चल के जगह जगह ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। और हे नित्यानंद, हम जब अभी पद्मा नदी में स्नान करने जाएंगे तो मैं पद्मा नदी के अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम जो मेरे हृदय में है वो मैं प्रदान कर दूंगा, और जब नरोत्तम का जन्म होगा, आविर्भाव होगा, और जब वो पद्मा नदी में स्नान करेगा तो पद्मा नदी इसी कृष्ण प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में प्रदान करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बड़े आश्चर्यचकित हो गए इस बात को सुनकर, और फिर सारे भक्तों ने कीर्तन किया और पद्मा नदी में स्नान करने की तैयारी की। उस समय नित्यानंद प्रभु ने चेतावनी दी सारे भक्तों को और कहा कि देखो, अभी चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में अपना हृदय का कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, तो अगर नदी में बाढ़ आ गया तो आश्चर्यचकित नहीं होना। तो फिर सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ पद्मा नदी में स्नान करने गए, और स्नान करते करते बहुत बाढ़ आ गया पानी में। उस समय मूर्तिमान पद्मा नदी की देवी, पद्मा देवी, वो बाहर आई हाथ जोड़कर और कहने लगी कि मैं समझ सकती हूं कि आप चाहते हैं कि मैं इस कृष्ण प्रेम को नरोत्तम को दे दूं, अवश्य आपके आज्ञा का पालन मैं करूंगी, परंतु मैं नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी, मैं कैसे जान सकती हूं कि नरोत्तम मेरे जल में स्नान करने के लिए आया है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे व्यक्ति में कोई व्यक्ति स्नान, तुम्हारे जल में कोई व्यक्ति स्नान करने आएगा और तुम्हारे जल में बाढ़ आ जाएगा जैसे इस समय आया है, और जिस समय तुम आनंद से, आनंद की सीमा तक पहुंच जाओगे, तब तुम समझ पाओगे कि नरोत्तम तुम्हारे पास आया है। तो पद्मा देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर से नदी में वापस चली गई। और इसके बाद में नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि ये स्थान इतना सुंदर है, रम्य है ये स्थान, मैं इधर वापस भी कभी आना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत ही शीघ्र जब नरोत्तम दास यहां पर प्रकट होगा तो उस समय तुम यहां आओगे और उसको मार्गदर्शन करोगे, उसी को तुम पद्मा नदी में ले जाओगे और कृष्ण प्रेम दोगे, मेरे हृदय का प्रेम उसे प्रदान करोगे। इस तरह से सारे भक्त वहां से चले गए। जिस साल चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ, मतलब जब चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला समाप्त करके स्वधाम लौट गए, उसी साल नरोत्तम दास प्रकट हुए उसी गांव में, खेतुरी गांव में। उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी। कृष्णानंद दत्त कायस्थ समाज के थे और उस सारे इलाके के बड़े राजा थे, बड़े धनी व्यक्ति थे, बड़े पुण्यवान भी थे और सारे शुभ लक्षण प्रकट हुए थे वातावरण में उस समय। और सभी लोग समझ गए कि कोई विशेष जीव अभी कृष्णानंद राजा और नारायणी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। और फिर बड़े हर्ष उल्लास से नामकरण संस्कार इत्यादि किया गया और उसका नाम रखा गया नरोत्तम, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। और जब अन्न प्राशन का समय आया तो एक बहुत अद्भुत घटना हुई। आप जानते हैं कि कई तरह के संस्कार किए जाते हैं, बच्चे के जन्म के पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है और फिर जन्म के बाद भी कई संस्कार होते हैं, जैसे अन्न प्राशन, चूड़ामुंडन और फिर उपनयन, आगे चल के विवाह संस्कार, फिर श्राद्ध इत्यादि, कई तरह के संस्कार, दशवधु संस्कार, 10 प्रमुख संस्कार होते हैं। तो अन्न प्राशन के समय पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, चावल के 2 कण खिलाए जाते हैं। तो उस समय यह प्रथा होती है कि बच्चे के सामने बहुत कुछ रखा जाता है, पैसा भी रखा जाता है, सोना चांदी भी रखा जाता है, श्रीमद् भागवत कृष्ण का पिक्चर भी रखा जाता है। और फिर बच्चा जिस ओर हाथ बढ़ाएगा समझ सकते हैं कि उसका झुकाव या उसकी वृत्ति आगे चल के ऐसी होगी। अगर उसने पैसे की ओर हाथ लगाया इसका मतलब है आगे चल के वो पैसे के पीछे भागेगा। अगर श्रीमद् भागवत या भगवद गीता की ओर हाथ बढ़ाया इसका मतलब है आगे चल के वो इस लाइन में बहुत रुचि रखेगा, ऐसे कहते हैं। तो खैर, अन्न प्राशन के समय जब पहली बार बालक नरोत्तम को 2 कण अन्न खिलाए जा रहे थे तो नरोत्तम ने बड़े घृणा से अपना मुंह हिला दिया, खाने के लिए इनकार कर दिया। बहुत कोशिश की मां ने लेकिन बिल्कुल मुंह बंद करके इस ओर उस ओर कर दिया मुंह को। फिर वहां पर एक वैष्णव थे जो महाप्रसाद लेकर आए थे कृष्ण भगवान का, तो उस कृष्ण भगवान के महाप्रसाद के 2 कण जब उस व्यक्ति ने बालक नरोत्तम के मुंह के पास लाए तो उसमें बड़े प्रेम और आनंद से नरोत्तम ने अपना मुंह खोला और वो अन्न स्वीकार किया। इससे सभी लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत अच्छा भक्त होने वाला है भगवान कृष्ण का। राजा कृष्णानंद और माता नारायणी भी बहुत खुश हो गई। सभी लोग समझ गए कि पहली बार नरोत्तम ने अन्न इसीलिए नहीं स्वीकार किया था क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद नहीं था। इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी उसे मालूम था, किसी ने ज्ञान नहीं दिया था, स्वाभाविक तौर से वो समझ पाया कि ये कृष्ण प्रसाद नहीं है। ठीक उसी तरह से हमें भी श्री कृष्ण के प्रसाद के अलावा किसी चीज को खाना नहीं चाहिए, चाहे हम चावल खा रहे हों, दाल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हों, भगवान कृष्ण को अर्पण करके ही हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से नरोत्तम को पाठशाला भेजा गया। बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही जल्दी पाठशाला के सारे विषय जो हैं वो सीख गए, न केवल पाठशाला के किताबों को लेकिन धार्मिक किताबों को भी, धार्मिक विषयों को भी वो बहुत जल्दी समझ गए। लेकिन पढ़ाई के अलावा वो एक कार्य में बहुत रुचि रखते थे। वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम था कृष्णदास और वो हमेशा गांव में बैठकर गांव के निवासियों को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनाते थे रोज। ये एक दैनिक कार्यक्रम था और बालक नरोत्तम रोज वहां जाकर बड़े श्रद्धा भाव से, प्रेम से कृष्णदास विप्र की कथा सुनते थे और इन कथाओं से बहुत प्रभावित होते। उस समय से ही उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति तीव्र प्रेम जागृत हो गया। तो देखिए, हमारे गांव में पहले कितनी सुंदर संस्कृति थी। रोज कोई न कोई वैष्णव भक्त या महान पंडित ऐसे आके भगवान के बारे में कथाएं बोलते थे और गांव के लोग एकत्र होकर उन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनते थे और फिर अपने अपने घरों में जाते थे। यही था जीवन। दिवस के समय अपने खेती में काम करना, परिश्रम करना और फिर शाम को आकर हरि कथा हरि कीर्तन में भाग लेना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और इस तरह से जीवन बहुत सुखी था। नरोत्तम दास ठाकुर, अब तक तो ठाकुर का की पदवी उनको नहीं मिली थी, तो नरोत्तम इस वातावरण में, इस संस्कृति में बड़े होते रहे। एक दिन जब वो तरुण थे तो उनको रात को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे नरोत्तम, जाओ अभी पद्मा नदी में स्नान करो, और जब तुम स्नान करोगे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो है तुम्हारे हृदय में पद्मा नदी प्रदान करने वाली है। तो तुरंत नरोत्तम उठे और सीधे पद्मा नदी की ओर चले गए, और जैसे ही वो पद्मा नदी में उन्होंने प्रवेश किया, तुरंत एक बहुत ही विशेष और अद्भुत अनुभव उनको हुआ। इस तरह से उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया कि वो प्राय बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वर्ण रूप का दर्शन किया, और चैतन्य महाप्रभु ने आकर नरोत्तम को आलिंगन किया, और ऐसे प्रतीत हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय से नरोत्तम के हृदय में वो कृष्ण प्रेम स्थानांतरित हो गया। और जब यह घटना हो गई तो नरोत्तम के चरित्र में, उनके रहन सहन में, उनके बोली में, उनके उठने बैठने में बहुत फर्क आ गया। यहां तक कि उनके जो शरीर का रंग था, वर्ण था, जो कि सांवला था, वो इस समय चैतन्य महाप्रभु की तरह गौर वर्ण हो गया, स्वर्ण का वर्ण हो गया। और जब वो पानी से बाहर निकले तो बस मानो कि एक उन्मत्त व्यक्ति से की तरह थे। जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, जोर से नृत्य कर रहे थे, सीधा चल नहीं पा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते करते। जब वो घर में आए तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। हृदय में सोच लगे, अरे ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। फिर नारायणी देवी ने नरोत्तम से पूछा, अरे बेटा क्या बात है, क्यों ऐसे रो रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या हो गया है। तो उस समय नरोत्तम ने कहा कि जब मैं पद्मा नदी में स्नान करने गया तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने मुझे आलिंगन किया और मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल हो जाऊं, कैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय मुझे प्राप्त हो सकता है। इस विचार के अलावा मेरे मन में और कोई विचार नहीं है। तो मुझे अनुमति दीजिए, मुझे अभी पारिवारिक जीवन में बिल्कुल कोई रुचि नहीं लग रही है। जब इस बात को राजा कृष्णानंद और नारायणी देवी ने सुना, उनको बहुत दुख हुआ। जब बचपन में उन्होंने सुना या जाना कि हमारा भक्त, हमारा बच्चा अच्छा भक्त होने वाला है, वो खुश थे क्योंकि वो भी पुण्यवान थे, वो भी कृष्ण के भक्त थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब ये घर छोड़ के जाने वाला है, तो उस समय बहुत दुखी हो गए। कृष्णानंद आखिर एक राजा थे, उनकी एक योजना थी कि हमारा बेटा भी राजा बने हमारी बाद में, और नरोत्तम उनका इकलौता बेटा था। अब वो घर छोड़ने की बात कर रहा है तो दोनों बड़े विचलित हो गए। लेकिन नरोत्तम का प्रेम कोई रोक नहीं सका। नरोत्तम दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण के बारे में और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते, जप करते, बीच बीच में कभी उठते, ऐसे ये सारे भक्ति के लक्षण प्रकट करते रहते। दिन रात उनका और कोई काम ही नहीं था। और राजा कृष्णानंद ने उचित समझा कि नरोत्तम को घर से भागने से बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। हमेशा पहरा देते कई सैनिक उनके जो चौकीदार थे उन्होंने वहां रखे और प्रेम से, प्रेम की वजह से अपने पुत्र नरोत्तम को घर में ही बंदी बना दिया। उनका घर ही एक तरह का कैद खाना हो गया, क्योंकि राजा कृष्णानंद सोच रहे थे कि अगर नरोत्तम चले जाए तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरह से नरोत्तम घर में ही रहे, लेकिन घर में रहते रहते 24 घंटे उनका कीर्तन रहता। बहुत ही शीघ्र बात सारे प्रांत में फैल गई कि नरोत्तम के जीवन में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, किस तरह के भक्ति के लक्षण वो प्रकट कर रहा है, कितना महान भक्त है ये। और जगह जगह से लोग नरोत्तम का दर्शन करने आते हैं, ये तो बहुत महान व्यक्ति है। उधर एक और मुसलमान राजा थे, जागीरदार थे उस इलाके के, उन्होंने भी नरोत्तम के बारे में सुना। वो भी चाहते थे कि वो नरोत्तम का दर्शन करें, तो उन्होंने राजा कृष्णानंद से निवेदन किया कि आपके पुत्र को कृपया हमारे पास भेजिए, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा कृष्णानंद सोच रहे थे कि हमारे लड़के को अगर हमने भेज दिया तो खतरा है कहीं भाग ना जाए, लेकिन अगर हम भेजेंगे नहीं तो वो जागीरदार जो है शायद उसके साथ हमारा संबंध खराब हो जाए, क्या किया जाए। आखिर उन्होंने चौकीदारों के संग नरोत्तम को भेज दिया। जैसे ही वो उस जागीरदार के पास पहुंच रहे थे, नरोत्तम ने मौका देखा और जल्दी से जंगल में भाग गए और वृंदावन की ओर गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं नवद्वीप की ओर जाऊंगा, जो कि चैतन्य महाप्रभु का तीर्थ स्थान है, तो चौकीदार तो सबसे पहले वहीं जाएंगे, सोचेंगे कि हम वहां हैं, इसलिए वो दूसरा रास्ता पकड़ के वृंदावन की ओर चल पड़े। अभी थे तो राजकुमार, बड़े लाड़ प्यार से ठाट से बड़े हुए थे, पोला पासा पोला उनके वो पाला पोसा हुआ था, तो इस तरह से उनका शरीर काफी कोमल था, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के आदि थे। और अब यहां जंगल में अकेले सफर कर रहे थे, दिन भर चलते चलते शरीर में घाव आ गए, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। इस तरह से थोड़े समय बाद वो थकावट के मारे वहां पर गिर पड़े जंगल में, और आगे चलते फिर से गिरते। आखिर ऐसा हुआ कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, स्वप्न में ही साक्षात उनके सामने प्रकट हुए एक स्वर्ण वर्ण के ब्राह्मण के रूप में। उनके हाथ में एक बड़ा दूध का पात्र था, जिस तरह से माधवेंद्रपुरी के पास स्वयं श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में आए थे, उसी तरह से यहां पर चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम के सामने एक ब्राह्मण के रूप में आए और कहा कि लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, इस दूध का पान करो और विश्राम करो। नरोत्तम ने पहचाना नहीं कि ये ब्राह्मण तो वही उनके आराध्य देव हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन इतने भूखे प्यासे थे, थके हुए थे, कि बड़े कृतज्ञता से उस दूध को स्वीकार किया और उसका पान किया। ये दूध तो अमृत के समान था। और फिर जैसे ही वो दूध का पान कर चुके, फिर विश्राम करने के लिए बैठे, और उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके सपने में आए और कहने लगे कि अरे, जिस व्यक्ति ने तुम्हें दूध दिया वो तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तुम पहचान नहीं पाए, तो चलो उठो, अब आगे बढ़ो, वृंदावन की ओर चलो, कोई चिंता नहीं करो, तुम सुरक्षित रहोगे। इस तरह से जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने स्वप्न में नरोत्तम को प्रोत्साहन दिया और जब वो जागे नींद से, तो उनकी शक्ति 10 गुना ज्यादा हो गई नरोत्तम की। क्योंकि अब उनको पता चला कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा की है कि स्वयं उन्होंने आके मुझे दूध पिलाया है। बस यही शक्ति उनको चाहिए थी, आध्यात्मिक शक्ति, और तेजी से आगे चलते गए वृंदावन की ओर। लेकिन इसी स्थान पर अगले सुबह आगे चलने के पहले राजा कृष्णानंद ने जो कई चौकीदारों का दल भेजे थे जगह जगह, उनमें से एक दल यहां आ पहुंचा और उन्होंने नरोत्तम को ढूंढ निकाला। तो नरोत्तम ने उनसे कहा कि देखिए, जब किसी स्त्री का पति का देहांत होता है तो ऐसे देखा जाता है कि वो कभी सती करती है, वो भी अपने पति के शरीर के साथ वो भी अग्नि में प्रवेश करती है, और उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो प्रेम की वजह से कभी कभी उसको रोकते हैं। तो उसी तरह से मैं अभी भक्ति के अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूं, और आप सब मेरे से प्रेम करते हो, आप मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री वैसे करती है, मुझे भी चैतन्य महाप्रभु के शरण में रहना है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो इस बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण से और जिस मीठे मधुर ढंग से नरोत्तम ने उनको समझाया, ये सारे चौकीदार बड़े मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो कह रहे हो तुम ठीक है, चले जाओ जाओ। और यहां तक कि उनमें से जो एक चौकीदार था उसने स्वयं अपने पैसे दे दिए, चलो ले लो रास्ते में काम पाएंगे। और फिर नरोत्तम आगे चलते गए। आखिर में जब वो मथुरा पहुंचे तो वहां पर एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई और ब्राह्मण के घर में उन्होंने आश्रय लिया रात के लिए। उस ब्राह्मण ने उनको बताया कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, काशीश्वर पंडित और ऐसे कई जो महान भक्त हैं उनका तिरुभाव हो चुका है, वो भगवान के धाम में लौट कर गए हैं। जब ये नरोत्तम ने सुना तो बहुत दुखी हो गए, फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि इतने दूर चल के आए थे ऐसे महान वैष्णवों का संग प्राप्त करने के लिए, और जब यहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि अब तो ये नहीं रहे। तो सोचा क्या फायदा, मैं इतने दूर आया, ऐसे महान वैष्णवों का संग नहीं होगा, और ऐसे रोते रहे तो थकावट के मारे उनको नींद आ गई। तो जब नींद आई तो उस समय ये सारे जितने भी वैष्णव थे जिनके बारे में उन्होंने उस ब्राह्मण से सुना था, वो इस स्वप्न में आए और उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो वृंदावन में और जीव गोस्वामी के पास जाके शिक्षा ग्रहण करो। इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिला और नरोत्तम जब सुबह को जागे तो वृंदावन की ओर चल पड़े। सबसे पहले पहुंचे राधा गोविंद देव मंदिर में, जहां श्री जीव गोस्वामी सेवा करते थे। राधा गोविंद मंदिर वैसे रूप गोस्वामी ने बनाई थी, और जब जीव गोस्वामी को पता चला कि नरोत्तम आए हैं तो जल्दी से अपने निवास स्थान से वहां पर आए। सारे वृंदावन में बात फैल गई थी। वैसे सभी लोग जानते थे कि नरोत्तम नाम के बहुत महान भक्त जो कि तरुण हैं वो यहां पर आने वाले हैं। तो जैसे ही नरोत्तम राधा गोविंद मंदिर पहुंचे तो न केवल जीव गोस्वामी और अन्य गौड़ीय वैष्णव वहां थे, लेकिन वहां के अलग अलग मंदिरों के महंत जो हैं वो भी वहां पर जल्दी आए, कहां है नरोत्तम, कहां है नरोत्तम। उस समय नरोत्तम राधा गोविंद देव को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो थोड़े वैष्णवों ने जो उस समय आए हुए वैष्णवों को बताया कि देखो ये है नरोत्तम, यहां दंडवत कर रहे हैं। इस तरह से पहली बार नरोत्तम ने वृंदावन के वैष्णवों का दर्शन किया। उस समय वहां पर जैसे बड़े आनंद से नरोत्तम वैष्णवों का संग करते रहे, उनसे उपदेश ग्रहण करते रहे, बहुत शुद्ध भक्त वहां रहते थे वृंदावन में उस समय। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए नरोत्तम एक वैष्णव से जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी भी वैसे भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के लीला में नवद्वीप में शामिल थे। एक दो जगह ऐसे ग्रंथों में बताया जाता है कि शायद वो चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, लेकिन खैर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको आदेश दिया था कि आप भूगर्भ गोस्वामी के साथ वृंदावन में जाओ और भगवान कृष्ण ने जिन स्थानों में लीला की थी उनको ढूंढ निकालो, क्योंकि वास्तव में लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद थे, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करने आए थे उस समय के 4,500 वर्ष पूर्व, उस समय ये दो भी अपने पूर्व स्वरूप में थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे और वो इस बात को भी जानते थे कि दोनों भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी बड़े प्रिय मित्र हैं एक दूसरे के। कई बार गौड़ीय वैष्णव भक्तों को लगता है कि 6 गोस्वामी पहले भक्त थे जिन्होंने जाके राधा कृष्ण के लीलाओं के स्थान को पुनः ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, उनके पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन भेजे गए थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा। परंतु लोकनाथ गोस्वामी इस बात इस दिशा में ज्यादा नहीं कर पाए जब तक कि 6 गोस्वामी वहां पर नहीं आए, खास करके रूप और सनातन गोस्वामी, बड़े वहां के माननीय वरिष्ठ वैष्णव थे वो लोकनाथ गोस्वामी, और नरोत्तम के हृदय में उनके प्रति आकर्षण हुआ। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को आदेश दिया था कि तुम वृंदावन जाओ, उसी समय उन्होंने उनको आदेश दिया था, इसका मतलब है कई साल बाद एक बहुत महान व्यक्ति, एक तरुण तुम्हारे पास आएगा, उसका नाम होगा नरोत्तम और तुम्हें नरोत्तम को दीक्षा देनी होगी। कई साल पहले की बात है। और जिस दिन नरोत्तम वहां वृंदावन पहुंचे थे उसके पहले रात में भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा था उनको कि देखो नरोत्तम आ रहा है वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी को पता चला था, तो लोकनाथ गोस्वामी ने स्वयं कृष्ण प्रसाद रखा था वहां और नरोत्तम को बुलाया और दोनों साथ में बैठकर प्रसाद लेने लगे। उस समय नरोत्तम ने उनसे कहा कि मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा ले लूं, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है, तुम तो पहले से ही भगवान के शुद्ध भक्त हो, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने मेरे स्वप्न में आके मुझे आदेश दिया है, तुम्हें तो चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया है, तुम्हारे लिए कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं रही, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु तो आदि गुरु हैं, तो वही साक्षात डायरेक्ट तुम्हारे आदि गुरु हैं, तुम्हारे गुरु हैं। तो फिर नरोत्तम ने जवाब दिया, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु हैं, परंतु फिर भी मेरे आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए मुझे एक गुरु चाहिए, क्योंकि मैं तो एक तरुण हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, इसलिए कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, और वैसे भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसे कम से कम 1 साल हरिनाम के जाप करने में ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी बड़े नम्र थे, इसलिए वो किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे, सोचते थे कि मैं गुरु होने के लिए योग्य बिल्कुल नहीं हूं। तो इस तरह से नरोत्तम दास ने सोचा कि ठीक है, अगर लोकनाथ गोस्वामी जिनको मैं गुरु मानता हूं अगर उनका आदेश ऐसा है तो वही सही, और वैसे भी हरिनाम लेना नरोत्तम के लिए कोई नई बात तो नहीं थी। तो बड़े प्रेम से नरोत्तम ने हरिनाम लेना शुरू कर दिया, वैसे कर ही रहे थे लेकिन वृंदावन में बड़े और ध्यान से करने लगे। और इस दौरान इस पहले साल में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी की कई तरह से सेवा की। जहां जब भी लोकनाथ गोस्वामी प्रवचन देते थे वो अवश्य वहां जाकर बैठते थे और उनसे श्रवण करते थे। केवल लोकनाथ गोस्वामी के अवशिष्ट का सेवन करते थे। और जब लोकनाथ गोस्वामी शौच के लिए जाते थे तो छुप कर वो रहते थे और फिर उस स्थान को स्वच्छ करते थे, और लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चलता था कि कौन ये सब स्वच्छ कर रहा है। फिर एक बार लोकनाथ गोस्वामी झाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहे थे कि देखूं तो सही कौन मेरी सेवा कर रहा है इतना। तब उन्होंने नरोत्तम को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी दीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुए। और एक साल इस तरह से बीत गया और नरोत्तम उनके साथ में रहकर बड़े नम्रता से उनकी सेवा करते रहे। फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी के स्वप्न में पुनः चैतन्य महाप्रभु आए और इस बार लोकनाथ गोस्वामी को डांटने लगे। मैंने पहले से आदेश दिया है ना तुम्हें नरोत्तम दास को दीक्षा देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर चैतन्य महाप्रभु अदृश्य हो गए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा अब तो देना ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा नहीं है। फिर थोड़े ही दिन बाद नरोत्तम फिर से आए और उन्होंने दीक्षा के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जब कोई कन्या है वो किसी से विवाह करना चाहती है तो प्रार्थना करती है कि पिताजी मेरे मत से सहमत हो, मेरे मत को माने, तो उसी तरह से मैंने आपको गुरु चुन लिया है, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान मेरे इस बात को स्वीकार करें। तो नरोत्तम की नम्रता को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर लोकनाथ गोस्वामी प्रभावित हुए। कहने लगे कि तुम तो बहुत दृढ़ हो तुम्हारे इच्छा में कि तुम मुझे गुरु स्वीकार करोगे, मैं बहुत दृढ़ हूं कि मैं कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता मेरे दृढ़ता से अधिक है, इसलिए ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हारे अलावा और किसी को मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और अंत तक लोकनाथ गोस्वामी ने किसी और भक्त को दीक्षा नहीं दी, नरोत्तम ही उनके एकमात्र शिष्य रहे। इस तरह से उनका नाम हुआ नरोत्तम दास। और उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने आदेश दिया नरोत्तम दास को कि तुम श्रीमद् भागवत में और षड गोस्वामी को ग्रंथों में उपदेश प्राप्त करो जीव गोस्वामी के पास जाकर। उस समय जीव गोस्वामी बहुत वरिष्ठ और सबसे महान विद्वान वैष्णव माने जाते थे वहां पर। और जीव गोस्वामी ने तो बहुत सुना था और जानते भी थे इनके बारे में, नरोत्तम के बारे में, तो वो उनको भी बड़ी खुशी हुई। इसके पहले एक घटना ये हुई थी कि लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों में रहकर जब नरोत्तम सेवा कर रहे थे, एक दिन उनके स्वप्न में एक सुंदर तरुणी आई जिनका रंग स्वर्ण रंग का था, और वो कहने लगी कि देखो मैं आज श्री कृष्ण को मिलने जा रही हूं कुंज में, और वहां पे कई सखियां हैं, उनमें से ज्यादा चंपकलता सखी है जो कि दूध को उबालकर दूध के कई तरह के सामग्री कृष्ण को देती है, तो मैं चाहती हूं कि तुम ये सेवा करो, उनकी सहायता करो। और इस तरह से ये जब स्वप्न आया तो तुरंत जब नींद से जागे तो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए नरोत्तम दास बताने के लिए कि मेरे लिए ऐसा स्वप्न आया था। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि हाँ ये स्वयं राधा रानी आई थी तुम्हारे स्वप्न में, और तुम्हारा स्थान भगवान के धाम में एक मंजरी का है, तुम गोपियों के दासी हो वहां पर राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो बहुत अच्छा है, और तुम्हारा सेवा वहां है राधा कृष्ण के लिए दूध के पदार्थ बनाना। इस तरह से अपने चिंतन में, अपने मन ही मन में वो इस दिव्य लीला के ऊपर चिंतन मनन करते रहे। और कई बार ऐसे होता कि जब वो दूध गर्म करने के लिए रख देते सिगड़ी के ऊपर तो दूध कभी कभी उबल के बाहर गिर पड़ता, और फिर उस दूध के पात्र को हटाते समय वो गर्म दूध उनके उंगलियों के ऊपर गिर पड़ता। ऐसे उनके हाथों में जलन के निशानी थे। तो नरोत्तम तो बड़े नम्र थे, सारा वृंदावन जानता था कि उनके हाथ के ऊपर जो जलन के निशान हैं वो क्या हैं और कैसे आए, क्यों आए, लेकिन नरोत्तम किसी को बताते नहीं थे, हालांकि सब लोग जानते थे। जब लोकनाथ गोस्वामी ने उनको जीव गोस्वामी के पास भेजा था तो जीव गोस्वामी ने उनको पूछा कि ये हाथ कैसे जल गया, क्या हुआ। तो जीव गोस्वामी को तो बता नहीं पड़ा उनको, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो देखिए, जब ऐसे महान भक्त होते हैं वो अपने चिंतन मनन करते करते अपने ध्यान में जब उनका हाथ जल गया था तो जब ध्यान खुला तो देखा कि वास्तव में उनका हाथ जला हुआ है। ये है शक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों के चिंतन की, उनके ध्यान की। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम तो राधा कृष्ण के एक नित्य पार्षद हो और तुम्हारा नाम है विलास मंजरी। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि हाँ, ये श्रीमती राधा रानी ने स्वयं हमें बताया। फिर जीव गोस्वामी के पास रहकर उन्होंने जीव गोस्वामी से बहुत उपदेश ग्रहण किए। उस समय जीव गोस्वामी के पास दो और महान वैष्णव आए थे शिष्य बनकर, और वो थे दुखी कृष्णदास, जिनको कि उनके गुरु हृदय चैतन्य ने बंगाल से भेजा था, और दूसरे थे श्रीनिवास, जिनको कि उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के पास भेजा था। और ये तीनों श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास, ये तीनों जीव गोस्वामी के पास रहे और बहुत कुछ सीखा और तीनों बहुत बड़े अच्छे मित्र बन गए। कई साल ऐसे बीत गए। फिर बंगाल से खबर आई, जानवा माता जो है, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, इस समय नित्यानंद प्रभु का भी तिरुभाव हो चुका था, और बंगाल में जानवा माता है वो वैष्णवों की सबसे प्रमुख थी, और उन्होंने बताया जीव गोस्वामी को एक पत्र में कि यहां बंगाल में षड गोस्वामियों का ग्रंथ बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, लोगों को ठीक ठाक मालूम नहीं है कि ये चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मार्ग क्या है, तो जो भी षड गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उनको यहां भिजवाइए। फिर जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को और दुखी कृष्णदास को आदेश दिया कि तुम जाओ। इस तरह से पहले पुस्तक वितरण की पार्टी शुरू हो गई हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में। वैसे दुखी कृष्णदास का नाम बाद में हो गया श्यामानंद पंडित, और श्रीनिवास हो गए श्रीनिवास आचार्य, और जीव गोस्वामी ने नरोत्तम को एक पदवी दी ठाकुर महाशय, और इसके बाद वो जाने गए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के नाम से, क्योंकि जीव गोस्वामी समझ लगे कि उनके तीनों शिष्य कितने महान हैं। और जब वो बंगाल की ओर जा रहे थे बैलगाड़ियों में इन सारे ग्रंथों को रख के, तो वहां पर थोड़े डाकुओं ने डाका मारा और ये सब चोरी कर दी। जब हम श्यामानंद पंडित के बारे में कभी चर्चा करेंगे तो इस घटना के बारे में ज्यादा विस्तार में वर्णन करेंगे। खैर, श्यामानंद पंडित वहीं पर रह गए इन पुस्तकों को ढूंढ निकालने के लिए, और नरोत्तम दास आगे चले गए अपने गांव खेतुर की ओर। क्षमा कीजिए, श्रीनिवास आचार्य वहां रह गए और श्यामानंद और नरोत्तम आगे चले गए खेतुरी ग्राम की ओर। जब खेतुरी ग्राम में पहुंचे तो वहां उनके जितने भी पहले के रिश्तेदार थे और गांव के निवासी थे, सभी लोगों को बहुत खुशी हुई कि नरोत्तम यहां वापस लौट कर आए हैं, और इस समय तो बड़े महान वैष्णव आचार्य बने थे, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय होकर आए थे। और थोड़े दिन वहां श्यामानंद पंडित भी उनके साथ में रहे और फिर वो उड़ीसा में चले गए। इधर नरोत्तम दास ठाकुर के पास कई लोग आए, उन्होंने उनको वैष्णव बनाया, उनको उपदेश दिया, उनको आश्रय दिया, और बहुत ही जल्दी वो सारे बंगाल के सबसे प्रमुख वैष्णव गुरु बने। कई लोग वहां पर आए, महान लोग, बड़े बड़े लेखक, नेता, राजा, और उनके जो भाई थे संतोष दत्ता, जो वहां के राजा थे उस समय, वो भी उनके शिष्य बने। इस तरह से नरोत्तम दास का प्रचार जारी रहा। एक बार ऐसे हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में मैं बहुत तड़प रहा हूं, तो उनके लीला स्थानों को मैं देखना चाहता हूं, और जो भक्त है जिन्होंने उनका संग किया था, या जिन भक्तों ने उनके भक्तों का संग किया है, मैं उन भक्तों का दर्शन करना चाहता हूं, उनका संग प्राप्त करना चाहता हूं। तो फिर सारे गौर मंडल भूमि की परिक्रमा के लिए वो निकल पड़े। गौर मंडल भूमि मतलब वो सारी भूमि जहां के चैतन्य महाप्रभु ने लीला किए थे। जैसे व्रज भूमि वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला किए थे, उसी तरह से गौर मंडल भूमि वो जगह है जहां चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने लीलाएं किए थे। तो जगह जगह जाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भक्तों का संग किया, जैसे कि शुक्लंबर ब्रह्मचारी, दामोदर पंडित, फिर श्रीवास ठाकुर के दो भाई, और इस तरह से जगह जगह गए। अच्युतानंद, जो कि अद्वैत आचार्य के भाई थे, जब वापस लौटे तो उनके लिए एक पत्र था जो कि उनके दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी ने वृंदावन से भेजा था, और उस पत्र में लोकनाथ गोस्वामी ने कहा था कि अगर बंगाल में अभी ज्यादा प्रचार बढ़ाना है, वहां लोगों को वैष्णव बनाना है, तो भी अर्चा विग्रह की सेवा होनी चाहिए, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की मूर्तियों की स्थापना होनी चाहिए, इस तरह से लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो अपने गुरु का आदेश उन्होंने स्वीकार किया, और उस गांव में उन्होंने निर्णय किया कि एक बड़ा उत्सव मनाएंगे, जिसमें हम इन सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनकी स्थापना करेंगे। उन्होंने 5 राधा कृष्ण की मूर्तियां बनवाई, और 2 चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया, जो कि उनकी पत्नी थी, उनकी मूर्तियां बनाई, 7 जोड़ी। और उन्होंने सोचा कि गौर पूर्णिमा का जो समय है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उस दिन में ये हमें उत्सव करना चाहिए। जिस दिन से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तब से बड़े पैमाने पर कभी भी गौर पूर्णिमा का उत्सव नहीं मनाया गया था। और नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि बहुत बड़े पैमाने पर इस बार खेतुरी ग्राम में हम उत्सव मनाएंगे गौर पूर्णिमा का। और फिर सारी तैयारी शुरू हो गई। बहुत हजारों की संख्या में भक्तों ने सेवा में शामिल हुए। जैसे यहां पर रथ यात्रा के समय कितने सारे भक्त शामिल होते हैं, कोई एक विभाग संभालता है, कोई दूसरी सेवा देखता है, तो उस समय खेतुरी ग्राम में भी हजारों की संख्या में भक्त लोग अलग अलग सेवा में व्यस्त रहे। निमंत्रण जगह जगह पहुंच गए, जितने भी वैष्णव थे वहां, सबको निमंत्रण वहां पहुंचा, और वह निमंत्रण नरोत्तम दास ठाकुर में सुंदर संस्कृत कविता में लिखी थी। तो सारे वैष्णव इस निमंत्रण को पढ़ के बड़े खुश हुए, उस खबर को सुनकर भी बड़े खुश हुए, और अपने अपने साथियों को लेकर खेतुरी ग्राम की ओर चल पड़े। केवल बंगाल में नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर में भारत के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, वहां सारे महंतों को उन्होंने निमंत्रण भेजा, और फिर उनके रहने की व्यवस्था करनी थी। भाग्य से उनका भाई ही राजा था वहां का, उसके पास बहुत धन था, तो उन्होंने सोचा हम स्पॉन्सर करेंगे। तो फिर उन्होंने एक सुंदर भव्य मंदिर बनाया। सब केवल कई 2-4 महीने में बात सारा काम हो गया, और साथ साथ जो अतिथि भक्त आने वाले थे उनको रहने की व्यवस्था, उन्होंने कई इमारतें बनाई, धर्मशालाएं भी बनाए, नए सुंदर उद्यान बनाए, एक कुंड भी बनाया, और ये सब केवल इस एक उत्सव के लिए। और इस तरह से तैयारियां होने लगी, और जैसे जैसे अलग अलग जगह से लोग आने लगे इस खेतुरी ग्राम के गौर पूर्णिमा के महोत्सव के लिए, तो वो अन्य लोगों को बताते रहे रास्ते में, जिनको भी वो मिलते थे कहते अरे चलो चलो खेतुरी ग्राम में बहुत बड़ा गौर पूर्णिमा का उत्सव होने वाला है, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने वाला है, चलो। इस तरह से हजारों हजारों की संख्या में लोग आ गए, हर रोज बड़े संख्या में लोग आते रहते। और जैसे वो आते तो इन सारे भक्तों का स्वागत होता फूल मालाओं से, चंदन से। तो देखिए ये हमारी संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति। जब अतिथि आते हैं तो कैसे उनका स्वागत करना चाहिए, कितने प्रेम से, मीठे शब्दों से। और फिर जैसे जैसे अलग अलग स्थानों में ये वैष्णव चले गए उनके निवास स्थानों में, नरोत्तम दास ठाकुर ने व्यवस्था की थी कि सब वैष्णवों के साथ में उनके निजी सेवक होंगे। तो देखिए कितने सेवक हुए होंगे, अतिथि हजारों की संख्या में थे तो सेवक कितने हुए होंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, भक्त थे सेवा करने के लिए, वैष्णव सेवा। जैसे आप सब करते हैं जब रथ यात्रा के समय अतिथि आते हैं तो आप उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, तो उसी तरह से जितने भी वैष्णव आए थे बड़े अच्छे ढंग से व्यक्तिगत रूप से हर एक वैष्णव की सेवा हो रही थी। हर एक वैष्णव को लग रहा था कि बस ये लोग मेरी इतना सेवा कर रहे हैं कि क्या कहें। तो अतिथियों की, वैष्णव अतिथियों की सेवा इस तरह से करनी चाहिए कि उसे लगना चाहिए कि ऐसा प्रेम ऐसा स्वागत तो मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया है, और वो छोड़ने की इच्छा ही नहीं रखे उस जगह को। और जब कोई खास करके महान भक्त आते उनके लिए विशेष स्वागत और सत्कार करते। जब जाह्नवा माता जी आई खरदाहा से उनके भक्तों के संग, तो खास उनकी पूजा उपासना की स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर ने। उधर शांतिपुर से अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद आए, नवद्वीप से श्रीकांत और श्रीहट जो कि श्रीवास ठाकुर के भाई थे वो आए, और अलग अलग जगह से जाजी ग्राम से श्रीनिवास आचार्य आए, ओडिशा से दूसरी जगह से श्यामानंद पंडित और उनके भक्त आए। इस तरह से बहुत सारे भक्त, जाने माने भक्त जगह जगह से आए। और फिर रात को वहां सब लोग जब एकत्र हुए थे गौर पूर्णिमा के रात के दिन की पहली जो रात थी, तो वहां पे कार्यक्रम हुआ, कीर्तन हुआ, बड़े धुआंधार कीर्तन हुआ। और फिर रात को सब लोग सो गए क्योंकि अगले दिन गौर पूर्णिमा था। तो पहली गौर पूर्णिमा का उत्सव, प्रातः काल को उठकर सभी लोगों ने अर्चा विग्रह के पास आए, और इन अर्चा विग्रह की स्थापना हुई जैसे कि स्मृति शास्त्रों में बताया है। अभिषेक के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रमुख पुजारी थे, और फिर बहुत सुंदर मधुर कीर्तन हो रहा था, और सारी प्राण प्रतिष्ठा जब समाप्त हो गई तो महाप्रसाद सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ भक्त थी जाह्नवा माता उनको दिया, फिर उनका अवशिष्ट अन्य भक्तों ने जैसे नरोत्तम दास इत्यादि उन्होंने किया, और फिर अन्य सारे भक्तों को उन्होंने प्रसाद बांटा। और उसके बाद में फिर सब भक्त प्रसाद लेने के बाद कीर्तन मंडप में आ गए। कीर्तन मंडप में जब सब आए फिर कीर्तन शुरू हुआ। खास कीर्तन मंडप बनाया गया था इस उत्सव के लिए, काफी बड़ा था, और वहां जगह जगह से जो भक्त आए थे अपने अपने मृदंग वगैरह लेकर, बड़े बड़े निपुण प्रवीण मृदंग बजाने वाले वगैरह थे। और फिर स्टेज के ऊपर उठे, मंच के ऊपर उठे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन इतने सुंदर हुआ करते थे, इतने मधुर कि इसकी कोई तुलना नहीं, क्योंकि खास चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये कीर्तन के रस के आचार्य होंगे। और उन्होंने खास करके गरनहटी नाम का एक कीर्तन का स्टाइल है, एक पद्धति है, उसका उद्घाटन किया। अलग अलग तरह के कीर्तन की पद्धतियां होती हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया। अलग अलग ताल राग अभिनय नृत्य करते करते सारे भक्त लोग भाव विभोर हो गए, और कीर्तन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका माधुर्य बढ़ता गया, घंटे घंटों घंटों ऐसे कीर्तन चलता रहा। किसी भक्त को पता नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। मानो ऐसे लग रहा था कि सारे भक्त दिव्य प्रेम और आनंद के सागर में डूब रहे हैं और इस दिव्य संकीर्तन के आनंद की लहरें उनको बहाकर ले जा रही हैं। और किसी को यह नहीं चाहिए था कि कीर्तन समाप्त हो। वैसे ये जो कीर्तन है इसका मूल तो खास करके इस पद्धति का जिससे नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे थे उसका मूल बीज जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास था। फिर उनसे जो घोष बंधु थे माधव घोष गोविंद घोष वसु घोष उन्होंने उसको और बढ़ाया और इस पद्धति की परिपूर्णता वो नरोत्तम दास ठाकुर में आई। फिर नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से सुंदर कीर्तन करने लगे। काफी समय बीत गया और कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में वहां पर गोलोक धाम से प्रकट हुए। इसके पहले रात में चैतन्य महाप्रभु और एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आए थे और उन्होंने उनको कहा था कि कल तुम्हारे सुंदर कीर्तन के समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को मालूम था तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का उत्साह जैसे कीर्तन बढ़ रहा था और भी बढ़ते जा रहा था। वो थक नहीं रहे थे, दो घंटे चार घंटे, लेकिन और भी तेजी से कीर्तन करते जा रहे थे। और अचानक चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु आए, सारे पंच तत्व वहां आए, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर सभी वहां आए और भी पार्षद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और भी वैष्णव सब आए। सब लोग कीर्तन करने लगे सबके सामने, ऐसा नहीं कि केवल नरोत्तम दास ठाकुर इसको देख रहे थे, सारे उपस्थित वैष्णव उन्होंने देखा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व अन्य वैष्णव आए हैं जो कि पहले पृथ्वी छोड़कर भगवान के धाम में लौट कर गए थे, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में शामिल होने के लिए वहां पर आए। लगातार कीर्तन घंटों घंटों चलती गई और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके कीर्तन का स्वाद लिया। और जब कीर्तन आखिर में समाप्त हुआ, रात काफी बीत चुकी थी, फिर जानवा माता जी ने वहां एक और लीला के लिए व्यवस्था की थी। आप जानते हैं कि वृंदावन में होली के दिन भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में पिचकारी से लीला करते हैं जिसका विकृत प्रतिबिंब हम आजकल देखते हैं होली के समय। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ के पिचकारी से गुलाल फेंकना नाना प्रकार के रंग फेंकना एक दूसरे के ऊपर, तो जानवा माता जी ने सारे रंग तैयार किए और राधा के मूर्तियों में उन्होंने उनको अर्पण किया और फिर भक्तों से कहा एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़को। फिर काफी समय भक्तों ने बहुत मजा किया, एक दूसरे के ऊपर रंग जमाया, पिचकारी से एक दूसरे के ऊपर रंग डालने लगे और ऐसे सारी रात बीत गई। और फिर अगले दिन सुबह को जानवा माता जी ने स्वयं अपने भक्तों के संग प्रसाद बनाया, उन्होंने स्वयं उनको प्रशिक्षण दिया हुआ था कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, किस तरह से प्रसाद बांटना चाहिए। ये वैष्णव संस्कृति में ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आचार कैसे प्रसाद बांटना चाहिए, कौन से आइटम को पहले बांटना है, कौन सा दूसरा, किस तरह से बांटना चाहिए, कितना बांटना चाहिए, कैसे हमारा मुंह होना चाहिए, टेढ़े मुंह से बांटना चाहिए कि हसमुख होकर बांटना चाहिए, कैसे बांटना चाहिए और फिर प्रसाद का सेवन कैसे करना चाहिए, ये सब वैष्णव संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रसाद तैयार करते समय हमें कैसे तैयार करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, जब हम सब्जी काट रहे हैं या हम आग पे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उस समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते करते हमें प्रसाद बनाना चाहिए। अगर प्रसाद बनाते बनाते हम लोग प्रजल्प करते हैं, कोई बातें संसार की बातें इधर उधर की भौतिक बातें करेंगे तो वही चेतना उस भोग में चले जाएगा और फिर जब हम भोग चढ़ाएंगे भगवान को तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है, उसमें भौतिकता है, तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है भोग से, जब हम नैवेद्य चढ़ाते हैं तो उस भोग में केवल हमारी कृष्ण चेतना होनी चाहिए, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन का स्वाद भगवान को मिलना चाहिए उस भोग में। भौतिक कथा या प्रजप का स्वाद नहीं मिलना चाहिए उस भोग के माध्यम से। तो जानवा माता ने बहुत अच्छी तरह से भक्तों को प्रशिक्षण किया था, फिर स्वयं उन्होंने अपने निजी हाथों से कर कमलों से सारे भक्तों को भोजन प्रसाद दिया और अंत में उन्होंने प्रसाद का सेवन किया। इस तरह से पूरे 3 दिन यह उत्सव चला। पहले गौर पूर्णिमा का उत्सव हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के निर्देश में चला, और भक्तों ने कभी ऐसे उत्सव का अनुभव नहीं किया था। वो सोच रहे थे, चाहते थे कि ये उत्सव कभी समाप्त ना हो, लेकिन आखिर सबको अपने अपने स्थानों में जाना था, सबको अपने अपने जिम्मेदारियां थी, संसार के भी और भक्ति के भी। इसलिए धीरे धीरे 3 दिन के बाद एक 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 करके सभी भक्त जाने लगे। तो ये खेतुरी ग्राम का जो गौर पूर्णिमा का महोत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में, क्योंकि पहली बार गौर पूर्णिमा मनाने का की जो प्रथा है वो आरंभ हो गई। और दूसरी बात, अर्चक विग्रह की सेवा किस तरह से करना है बड़े धूमधाम से और कैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो भी यहां दिखाई पड़ा। तीसरी बात, पहली बार जगह जगह से वैष्णव एक स्थान में आए और वैष्णवों को की एकता को बढ़ाने के लिए ये उत्सव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। और चौथी बात, वहां जितने भी सारे कृष्ण कथा हुए, महान भक्तों ने प्रवचन इत्यादि दिए, तो उससे चैतन्य महाप्रभु के पवित्र सिद्धांतों का वर्णन हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद में ऐसे कई लोग आए थे जो अपने अपने सिद्धांत बनवाकर वो कह रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है। तो इन गलत सिद्धांतों को, अपसिद्धांतों को नष्ट करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के सही सिद्धांतों को सही स्थापित करने के लिए ये खेतुरी ग्राम का गौर पूर्णिमा का महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसके बाद में हर साल यह उत्सव मनाया जाता था। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर उसके बाद में कभी वापस नहीं गए वृंदावन, वो बंगाल में ही रहे और वहीं पर प्रचार करते रहे। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में और बहुत कुछ कहना है और कई सुंदर लीलाएं हैं, आपको सुनना है कि और कभी सुने? 3 बज गए, कितने भक्तों को सुनना है, हाथ कीजिए ऊपर, कितने भक्तों को ज्यादा भूख लगी है अभी? ठीक है, 10 मिनट, ठीक है। तो उस समय जब वहां के ब्राह्मण जो थे, तथा कथित ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर इन ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इनके इतने अनुयायी हो गए हैं, सबसे बड़े गुरु बने हैं ये, तो उनके हृदय में जलन होने लगी। इतना ही नहीं, उनको क्रोध भी आया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर, इनका जन्म तो कोई ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, ये तो एक शूद्र कायस्थ परिवार के हैं, और ऐसे होते हुए वो ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं। इनके कितने सारे बड़े बड़े ब्राह्मण शिष्य हैं, जैसे रामचंद्र कविराज हैं, गंगा नारायण चक्रवर्ती हैं, तो ये कैसे है, ऐसे चीजों से हमारा धर्म का नाश होगा। तो वो तरह तरह से इनकी निंदा करते, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य थे वो शास्त्रों के आधार पर उनको हरा देते। बहुत कठिनाई लेकर वो इस सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे कि गुरु जो होता है वो जन्म से पहचाना नहीं जाता, वो गुणों से पहचाना जाता है। नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र वीरभद्र जब एक बार ऐसे ही खेतुरी ग्राम के उत्सव में आए थे कई साल बाद में, तो यह बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि उनको इस विषय के ऊपर वहां पूरा प्रवचन देना पड़ा था, केवल इस विषय के ऊपर। और जगह जगह अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने प्रमाण बतलाए और सिद्ध किया कि जन्म से जो ब्राह्मण है यह जरूरी नहीं है कि वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को गुणों से पहचाने जाते हैं, और अगर कोई वैष्णव है तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु हो। शास्त्र में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और मंत्र तंत्र में विशारद हो लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं हो तो वो गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णव गुरु न स्यात्। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांडाल है, श्वपच, श्व मतलब कुत्ता, पच मतलब खाने वाला, चांडाल जो कि सबसे नीच व्यक्ति माना जाता है, कुत्ते का मांस खाने वाला तो बहुत नीच माना जाता है, तो अगर ऐसे परिवार से कोई आदमी हो लेकिन वो अगर महान वैष्णव बन जाए, शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाए, श्वपचो वैष्णव गुरु हो, तो वो सारे जगत के लिए गुरु बनने के लिए योग्य है। तो जगह जगह से वीरभद्र ने यह बतलाया लोगों को कि देखो इस गलत फहमी में मत पड़ो, नरोत्तम दास ठाकुर महान वैष्णव हैं, इसलिए सारे जगत के लिए वो गुरु बनने के लिए योग्य हैं, ब्राह्मणों को भी दीक्षा देने के लिए योग्य हैं वो। तो इस तरह से प्रचार चलता गया, लेकिन फिर भी जलने वाले ब्राह्मणों की संख्या तो फिर भी काफी थी। कई बार ये ब्राह्मण जाकर उस प्रांत के राजा राजा नरसिंह देव से शिकायत करते कि देखो हमारा धर्म जो है वो खतरे में है, क्योंकि ये नरोत्तम दास जो है ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं, हालांकि ये शूद्र कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे, तो कुछ करना चाहिए इसके बारे में। राजा नरसिंह वो बड़े पुण्यवान राजा थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी नरोत्तम दास ठाकुर को कि क्या चल रहा है, यहां के ब्राह्मण काफी शिकायत कर रहे हैं आपके खिलाफ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़े नम्रता से लेकिन बड़े विद्वत्ता से उन ब्राह्मणों के कथन का खंडन किया और अपने पत्र में सिद्ध कर दिखाया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं उन ब्राह्मणों के साथ में वाद में बैठकर ये सिद्ध कर सकता हूं। तो राजा नरसिंह ने अपने प्रमुख ब्राह्मणों को साथ में लिया, चलो हम सब खेतुड़ी ग्राम जाते हैं, वहां पर इस नरोत्तम दास ठाकुर से चर्चा करते हैं। उनके ब्राह्मण उनके जो दरबार में जो पंडित थे उनमें से एक थे जिनका नाम था रूप नारायण। यही रूप नारायण पहले दिग्विजयी पंडित कहलाते थे। उनको एक बार जीव गोस्वामी ने वृंदावन में हराया था, जबकि उन्होंने अपना विजय पात्र लेकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दस्तखत प्राप्त कर ली थी। जगह जगह जाकर पंडितों को वाद में हराते, तर्क में, और फिर उनके दस्तखत लेते कि मैं रूप नारायण दिग्विजय पंडित से हार गया। लेकिन जब वो जीव गोस्वामी के पास आए तो जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया। तो वही रूप नारायण अब यहां पर राजा नरसिंह के पास थे, और उनको भी साथ में लेकर राजा नरसिंह खेतुड़ी ग्राम की ओर निकल पड़े। खबर पहुंची नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों को कि राजा यहां पर आ रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के दो प्रमुख शिष्य जो कि दोनों ब्राह्मण थे, वो थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज। तो उन्होंने सोचा कि इन सारे ब्राह्मणों को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस रास्ते में गए खेतुड़ी के बाहर जहां से राजा नरसिंह इन ब्राह्मणों को साथ में लेकर आने वाले थे, और उन्होंने रास्ते के बिल्कुल बगल में ही दो दुकान बनाए। एक उनमें से उन्होंने कुम्हार का, मिट्टी के मटकों का दुकान वहां पे बनाया, और दूसरे ने वहां पान सुपारी का दुकान खोल दिया। और जैसे ही ये दल राजा नरसिंह देव और उनके ब्राह्मण लोगों का दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने जाके कहा कि यहां आप थके होंगे, आपको रसोईया करने के लिए, पकाने के लिए मटके चाहिए, प्रसाद के बाद में आपको पान चाहिए, हमारे पास है। तो ये ब्राह्मण वहां आए सब चीजें खरीदने के लिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो दुकानदार जो थे, मटके कुम्हार एक है और दूसरा पान वाला है, शुद्ध संस्कृत में बोल रहे थे, वहां की देशी बंगाली बोली नहीं, शुद्ध संस्कृत। बड़े आश्चर्यचकित हुए, तो उनसे चर्चा करते गए और फिर कहने लगे कि आपके गुरु जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने बढ़िया उनको हरा दिया वाद में, शास्त्रों से उन्होंने सब प्रमाण प्रस्तुत करके उनकी बातों का खंडन किया। तो अब ये आश्चर्यचकित होकर राजा के पास कहने लगे कि अरे यहां ये दो दुकानदार हैं, ये शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, उन्होंने हमें वाद में हरा दिया। तो राजा को आश्चर्य हुआ, उन्होंने स्वयं रूप नारायण को भी भेजा, तो रूप नारायण को भी उन्होंने हरा दिया। और स्वयं वहां राजा आए देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है यहां पर। फिर उन दो तथाकथित दुकानदारों ने अपना परिचय दिया कि कहा हम तो केवल साधारण व्यक्ति हैं, हम केवल मामूली शिष्य हैं हमारे गुरु नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के। तो राजा नरसिंह ने सोचा अगर शिष्य ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे। तो ब्राह्मणों से कहा जगो, और अपमानित होना है तो आगे चलो, अगर और अपमानित नहीं होना है तो निकलो वापस, वापस चलते हैं दरबार में। तो फिर सारे ब्राह्मण वगैरह राजा के साथ वापस चले गए। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर का यश जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव वो भी बड़े अद्भुत ढंग से हुआ। दो बार या एक या दो बार तिरुभाव होते होते फिर वो वापस आ गए। एक बार 7 दिन लगातार वो ध्यान में बैठे रहे, सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के विरह में मेरे लिए जीना कठिन हो रहा है। तो एकांत स्थान में बैठे ध्यान में ही भगवान का चिंतन करते रहे, 7 दिन अपने ध्यान से बाहर नहीं निकले समाधि से। और उस समय वहां इलाके के जो जाति ब्राह्मण थे उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की निंदा करना आरंभ किया, कहने लगे कि देखो ये बड़ा आया ब्राह्मणों को दीक्षा देने वाला, अभी शूद्र की तरह अपना देह त्याग देगा। तो जब गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज इत्यादि इन्होंने सुना, इनको बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने मन ही मन में नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना की कि कृपया आप अभी मत जाइए, इनको सिद्ध कर दिखाना है कि ये कितने बड़े मूर्ख हैं। तो उस समय तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर के ऊपर एक स्वर्ण सोने का उपवीत प्रकट हो गया, जनेऊ। और अचानक इसको देखकर ये सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, और फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की निंदा करना बंद कर दिया। कई दिन और बीत गए, इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार चलता रहा। उन्होंने कई सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे और उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार करने हेतु संस्कृत भाषा में किताबें नहीं लिखी, वहां की जो देशी बोली थी उस भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे। जो आज भजन हम गा रहे थे प्रवचन के पहले, वो भी उन्हीं का भजन है। उनके दो प्रमुख किताबें हैं प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, छोटे छोटे सुंदर भजन जिसमें भक्ति के तत्व उन्होंने लिखे हुए हैं। सारे वेदों का, सारे आध्यात्मिक ज्ञान का, सारे भक्ति का सार उनके भजनों में पाया जाता है। सारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए उनके भजन बहुत प्रिय हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके भजन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब उनके तिरुभाव होने का समय आया, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो मेरे साथ गंगा जी में। तो वो गंगा जी में गए और गंगा जी में जैसे वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि गंगा जी का जल मेरे शरीर के ऊपर अर्पण करते रहना और बंद नहीं करना। और फिर उनके आंखों के सामने एक अति अद्भुत घटना होने लगी कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वहां खड़े थे जल में, उनका शरीर पिघलता रहा और पिघल के दूध बन गया और वो दूध जल में मिलता गया और इस तरह से धीरे धीरे उनका सारा शरीर पिघलता गया और शिष्य लोग देख रहे थे, बड़े चिंतित थे, क्या हो रहा है, हम जितना पानी दे रहे हैं उतना उनका शरीर दूध बनते जा रहा है। वो रोकना चाहते थे लेकिन गुरु का आदेश था, उनको पालन करना पड़ा। तो अंततः नरोत्तम दास ठाकुर का सारा दिव्य शरीर जो है वो दूध के रूप में पिघलकर गंगा जी में मिल गया। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ने ये थोड़ा बहुत दूध एक मटके में पात्र में रखकर उन्होंने अलग से रखा। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर इनका तिरुभाव हो गया और वो वापस गोलोक वृंदावन चले गए अपने प्रिय आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए। उधर गंगा नारायण चक्रवर्ती और अन्य भक्त बहुत शोक कर रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ कि उनके गुरु उनको छोड़कर चले गए हैं। और फिर वही दूध जो कि उनके दिव्य शरीर के पिघलने से आया था वो उन्होंने अपने गांव में ले गए गंगा नारायण चक्रवर्ती और वहां पे एक दुग्ध समाधि बनाई। वैसे साधारण तौर से जब किसी महान वैष्णव की समाधि होती है वो तीन प्रकार की होती है या कई प्रकार की होती है, जैसे कि पहले तो है शरीर की समाधि, उनके दिव्य शरीर को ही वहां रखते हैं नीचे जमीन में। सन्यासी और महान वैष्णव के शरीर को कभी जलाया नहीं जाता स्मशान में, वो जमीन के अंदर रखा जाता है क्योंकि उनका शरीर पहले से शुद्ध हो चुका होता है। दूसरे तरह की समाधि महान वैष्णवों के लिए है पुष्प समाधि, जो उनके दिव्य शरीर के ऊपर पुष्प कपड़े इत्यादि रखे हैं उनको नीचे जमीन में रखा जाता है, फिर वो जगह पुष्प समाधि हो जाती है। जैसे कि वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी की पूर्ण शरीर की समाधि है, वृंदावन के इस्कॉन के मंदिर में श्रील प्रभुपाद की समाधि है, लेकिन मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि है, मतलब उनके शरीर से जो पुष्प हैं उनको जमीन में रख के उसके ऊपर एक समाधि बनाई गई है। नाम समाधि भी है उनके नाम के ऊपर, लेकिन पहली बार गौड़ी वैष्णव इतिहास में एक दुग्ध समाधि बनी, दूध की समाधि, क्योंकि उनका शरीर का परिवर्तन दूध में हो गया, दिव्य दूध में, तो फिर यह दुग्ध समाधि वहां पर बन गया। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर इस पृथ्वी लोक पर कई सालों तक रहे, जगह जगह उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, अचिंत्य शक्ति भगवान ने उनको प्रदान कर दी इस प्रचार करने के लिए, और फिर गोलोक वृंदावन वापस लौट के चले गए। आज उनका आविर्भाव दिवस है, हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर वो हमेशा कृपा दृष्टि रखें, हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत कराएं और अवश्य वो हमारी हृदय की प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर के लिए हम संकीर्तन
भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाय गोसाईं करे चरण वंदन छाय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाथ अभीष्ट पुराण जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। छय गोसाई जार मुई तर दास, ए छय गोसाई जाय मुई तर दास, दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, सादर चरण से विभक्त सनेवास, सादर चरण से विभक्त सनेवास, जन्म जन्म होय ए अभिलाष, जन्म जन्म होय ए अभिलाष, छय गोसाई जब ब्रज कोइल वास, ए छय गोसाई जब ब्रज कोइल वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश, आनंद बोल हरि भज वृंदावन, आनंद बोल हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पाद मजाइया मन, श्री गुरु वैष्णव पाद मजाइया मन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे आज, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे आज, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, भज आनंद बोल हरि भज वृंदावन, 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 बोल आनंद बोल हरि भज वृंदावन, आनंद बोल हरि भज वृंदावन, हे आनंद बोल हरि भज वृंदावन, हे आनंद बोल हरि भज वृंदावन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम